ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा तेरी मुरली। अभी मुरली किसका है? अभी बाबा का हमारा है, हमारा भी है। अब मुरली है, देखो पूरा गाने में सब कुछ आ गया। सर्व खजानों का खान है मुरली। मुरली का महत्व बहुत बड़ा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी है, भगवत गीता में भी है, और भागवत कथा में श्री कृष्ण जैसा मुरली बजाते हैं, वैसा गोप गोप क्या अपना सब कुछ छोड़ के वो सुनने के लिए, उसके कृष्ण के साथ रास करने के लिए दौड़ते थे। ये अभी का ही गायन है। हम मुरली मिस करते हैं, रोज कहीं ना कोई टाइम में मुरली पढ़ते हैं, सुनते ही है। मुरली हमारे लिए जान है, हमारे लिए प्राण है, सब कुछ मुरली है। ब्राह्मण जीवन का सब कुछ मुरली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न, रोज जो जो मुरली रोज सुनते हैं वो हाथ उठाइए। चलो सभी बाबा के बच्चे अनन्य रतन गोप गोप की उनकी बहुत बहुत बधाई है। और जो मुरली क्लास कराते हैं, मुरली क्लास कराते हैं माना मुरली सुनाते हैं सभा में, जो बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे आते हैं उनको मुरली सुनाने की सेवा करते हैं, वो कौन कौन है? अनुभवी रतन भी है मुरली का। अच्छा मुरली है, अभी हम सभी सुनाई है। पहले पहले जब ब्रह्म बाबा ओम मंडली से शुरू हुआ था, मालूम है ना सभी की? ब्रह्म बाबा का हिस्ट्री मालूम है ना? हमारा विश्वविद्यालय कैसे शुरुआत हुई, किस प्रकार की वृद्धि हुई, कैसे भारत में शिफ्ट हुआ है, फिर सेवा केंद्र कैसे खुलता रहा, ये सब चीजें हम जानते ही है। फिर भी एक बार उस मुरली की नशा और खुशी उमंग उत्साह से जो अभी अष्टरतन दादिया बने हैं, महारथी बने हैं, किस आधार से बने हैं? मुरली से। उस समय कोई टाइप मिशन नहीं था ब्रह्म बाबा के टाइम पर। सिंध हैदराबाद की बात बता रहे हैं बाबा। लिखते थे बाबा, लिखते थे, सभी को सुनाते भी है। और जो जो बंधन में है, एक गंगे दादी है बहुत बंधन में थी, बहुत सारे ताले में बंद करके रखे थे उनको, फिर भी मुरली से बहुत प्यार था दादी को। बाबा ने क्या किया, कोई दादी के हाथ में मुरली दिया, जाओ उनको पहुंचाओ मुरली। लेकिन बंद कमरे में कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे बताइए? पीछे से गई, दीवार चढ़ गई, जो वेंटिलेटर होते ना, वेंटिलेटर से मुरली डाल दिया। देखिए मुरली के प्रति कितनी लगन थी हमारा दादियों को, कितना प्यार था, कितना रेस्पेक्ट था, सम्मान था। क्या है मुरली में बताइए, आप लोग बताना, मैं सिर्फ सुनाते जाऊंगा। क्या क्या खजाना है? एक 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 क्या है, एक बताना। ज्ञान का खजाना, खजाना खजाना वो लक्ष्य है। मुरली से हमको लक्ष्य मिलती है लक्ष्मी नारायण बने। क्या खजाना है भाई जी? मुरली क्या खजाना समाया हुआ है, क्या क्या खजाना समाया हुआ है? खुशी का खजाना और मुरली के दर खजाना क्या है? खजाना ज्ञान का खजाना है। ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है मुरली में। क्या क्या ज्ञान है थोड़ा रिवाइज कीजिए अंदर से। आत्मा का, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का सत्य परिचय का ज्ञान, ऐसा नशा में आना चाहिए। स्वयं भगवान का सत्य परिचय का ज्ञान है। और क्या है मुरली में? सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत संपूर्ण ज्ञान है इस सृष्टि का। और हाँ ड्रामा उसी में आता है। और हाँ चढ़ने कला उतरने की कला का संपूर्ण। और हाँ 84 जन्मों की कहानी भक्ति मार्ग में क्या समझते थे हम 84 लाख समझते थे। अभी बाबा ने स्पष्ट बता दिया हमारा जन्म 84 जन्म। वो भी 84 जन्म कौन लेते हैं जो इस समय संगम युग में परमात्मा का सत्य ज्ञान सत्य परिचय के आधार से समझ करके जीवन में धारण करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। बहुत खजाना है खुशी का आनंद का प्रेम का सब खजाना समाया है मुरली है। देखिए ओम मंडली के समय कोई कोर्स का किताब था बाबा ने ऐसा ही बताते थे आत्मा का ज्ञान आत्मा कैसे है। आत्मा का तो बहुत बड़ा रूप भी दिया गया था उस समय क्योंकि हमारा बुद्धि मोटी बुद्धि थे ना बाबा ने धीरे 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 सूक्ष्म जैसे होते गए योग करते गए बुद्धि जितना सूक्ष्म होते गए उतना बुद्धि का ताला खुलता गया खजाना अंदर बढ़ता गया परमात्मा ने। फिर हम समझ में आ गए आत्मा का रूप क्या है। ऐसा ब्रह्म बाबा आत्मा का परिचय परमात्मा का परिचय सब कुछ केवल वाचा द्वारा देते थे उसको बुद्धि द्वारा मन के द्वारा अनुभव कराते थे। कितना निश्चय होना चाहिए कोई चित्र नहीं है सामने कितना वाला उनका बुद्धि कितना पवित्र बनाया होगा ब्रह्म बाबा ने सोचिए। अभी हमारा साथ हमारे पास सब कुछ चित्र है कितना हमारा बुद्धि एकाग्र होती है चेक करने का है ना बुद्धि एकाग्र होती है होती है तभी तो योग बट्टी में पूरा आनंद शक्ति अतीन्द्रिय सुख सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। देखिए उस समय मुरली में सब कुछ है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है। दिया है ना कर्मों को गुह्य गति विकारों पर कैसे जीत प्राप्त करना है ये भी ज्ञान दिया है। मन जीत कैसे बने कर्मेंद्रियों को शीतल कैसे बनाए मुरली माना सब कुछ है टोटल हेल्दी लाइफस्टाइल है। मुरली माना सब कुछ जो भी अभी कोर्स का किताब बना पहले 7 दिन का कोर्स उसके बाद अलग अलग वर्गीकरण हुआ वर्गीकरण माना विंग्स कॉन्फ्रेंसेस होता तो मालूम है ना आप लोगों को महिला कॉन्फ्रेंस होता है जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस यूथ कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हर वर्ग के लिए अभी कोर्स का चित्र बन गया है। इन सभी कोर्सों का आधार क्या है मुरली है। मुरली के आधार से ही उन्होंने चिंतन किया मनन किया उसके आधार से उस प्रवृत्ति के आधार से अभी डॉक्टर्स क्या बोलते माइंड और बॉडी मेडिसिन एंड मेडिटेशन माइंड क्या होती है साइंस विज्ञान के पास भी ये समाधान नहीं है है समाधान है आत्मा कहा है उनको मालूम है पहली बात अभी अभी स्वीकार कर रहे हैं कुछ रिसर्च के माध्यम से लेकिन स्पष्ट ज्ञान साइंस विज्ञान के पास भी नहीं है इतना संपूर्ण विज्ञान समाया हुआ है मुरलियों में सब कुछ कोर्सेस जो भी कोर्सेस बनी है टोटल आधार हमारा मुरली है। इसलिए मुरली का महत्व अभी सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स भी होता है सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है कम्युनिकेशन स्किल्स होता है अलग अलग कोर्स बना हुआ है। हर कोर्स का आधार केवल मुरली है। जो भी हमारे सीनियर टीचर बहने हैं उषा बहन है शीलू बहन है गीता बहन है शिवानी बहन है इन सब ने मुरली का चिंतन बहुत डीपली स्टडी किया है इसलिए वो लोग आगे बढ़ते गया और कोर्सेस तैयार होते रहे। फिर समझाने में भी सहज हो जाता है जो नए नए आते हैं उनको चित्र और समझाने में भी सहज होता है। इस प्रकार का हम मुरली का महत्व समझना है। चलो आज की मुरली से हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद कुछ चिंतन दे देते हैं, फिर आप लिखने का उसके बारे में बताइए। आज मीठे बच्चे में बाबा ने क्या बोला है, एक एक बोलने का, सभी एक साथ नहीं बोलिए। सबको हमारा धंधा क्या है, सुझाव करना, रास्ता बताना, सच्चा रास्ता बताना है। देखो देही अभिमानी बनकर हम बताएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। देखो एक एक पॉइंट में कितना गहरा राज समाया है, देही अभिमानी, आत्माभिमानी। अच्छा दूसरा प्रश्नोत्तर में क्या है, आप लोग ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। बताइए प्रश्नोत्तर में क्या था। आगे जा सकता है, कौन सी विशेषता गरीब बच्चों में, दान पुण्य करने की श्रद्धा भावना विश्वास है। अभी हम बाबा को थैंक्स करना, हम कोटीश्वर नहीं बने। सभी गरीब है, गरीब बच्चे, लेकिन पद्मा पद्म भाग्यशाली है। हमारा जैसा भाग्य विश्व में कोई भी एक आत्मा को भी नहीं है, तन से भी, मन से भी, संबंधों में भी, हर प्रकार का हमारा स्थिति, हमारा स्वरूप, हमारा चेहरा कितना रूहानियत है, शुभ भावना से संपन्न है हमारा मन, बुद्धि कितना दिव्य है ना। इसलिए शुक्रिया संगम युग में हम गरीब बच्चे, ये भी नशा होना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये साधन नहीं है, ऐसा कोई मन में ऐसा भावना ही नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा खजाना ज्ञान आनंद खुशी, सबसे सबसे बड़ा अथॉरिटी स्वयं भगवान क्या हो गया, हमारा हो गया है। सब कुछ सारे ब्रह्मांड विश्व का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा स्वयं भगवान, वो हमारा हो गया। हम कौन है, डायरेक्ट बच्चे है, हम डायरेक्ट बच्चे। अब हम कभी किसी को जो कोर्स कराते हैं क्या बताते हैं, पहले भाई यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं है, कोई पूजा पाठ स्थूल क्रिया होता है, इधर दिखाई देता है, लेकिन हमारा मन और बुद्धि सदा लगन में मगन है परमात्मा से। बोलते हैं ना भाई, डायरेक्ट आपको परमात्मा से, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे हम, आप डायरेक्ट परमात्मा के साथ, परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा से बात कर सकते हैं, बोलते हैं ना। ऐसा गरीबी बच्चे होते हैं ना, उनमें नशा बहुत होता है दान पुण्य का, सेवा भावना का। जो सेवा में आ जाते हैं, कौन आता है सेवा में, हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। झाड़ू लगाने की सेवा भी दे दो, ओके, बर्तन मांजने की सेवा भी दे दो, ओके, भाग्य है ना। एक एक कर्मेंद्रिया, ये शरीर पूरा भगवान की सेवा में समर्पण हो रहा है। देखो सिख धर्म में भी, अमृतसर में भी, कई जगह पर बड़े बड़े धनवान करोड़पति चप्पल जूता, हमारा चप्पल जूता मंदिर में जाने के पहले रखते हैं ना स्टैंड में, वो लोग लेते हैं हमारा जूता चप्पल स्टैंड में, वो लोग रखते हैं और पूरा मंदिर को पोछा लगाते हैं, मंदिर को सफाई करते, बड़े बड़े करोड़पति जी, हाँ उसको सफाई भी करके पॉलिश भी कर। देखो पहली बार सुन रहा हूं मैं। देखो कितना सेवा भाव होता है, करोड़पति में भी सेवा भाव और गरीब बच्चों में तो हाई कंप्लीट सेवा भाव। बाबा ने मुरली में बोला करोड़पति में देहाभिमान भी आता है, नशा होता है, धन का नशा, साधनों का नशा, पोजीशन का नशा, लेकिन हमारे में नशा, कौन सी नशा है हमारे में, ईश्वरीय नशा है। ऐसा नशा उमंग उत्साह लाना चाहिए, चेहरा ही हमारा म्यूजियम है। बाबा संडे मुरली में बोला ना, अभी कोर्स कराना समझाना वो सब चीजें पार हो गया है, अभी अनुभवी मूर्त बनकर हमारा चेहरा, हमारा नयन, हमारा बोल, हमारा चेहरा सब चलन सेवा करना चाहिए। ऐसा चैतन्य म्यूजियम बाबा ने बोला, बोला है ना, सुना ना मुरली, अभी तो मुरली ऐसा साइलेंस की शक्ति के साथ। चलो प्रश्नोत्तर हो गया, उसके बाद मुरली में क्या बोला बाबा ने? सुनाइए, एक एक सुनाइए। आई एम लिजनर, यू आर ऑल स्पीकर्स। शिव जयंती के बारे में भाई लोग सुनाइए, पीछे वाला माताए बोलिए। गीता ज्ञान, श्री कृष्ण नहीं है, स्वयं शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है। और भाई लोग पीछे, भाई लोग कौन सा भाई जी? हाँ कृष्ण जयंती। और भाई लोग सुनाइए मुरली में बाबा ने क्या बोला? और हाँ ये विशेष बात मुरली में बाबा ने बोला, जो शिव जयंती शिव परमात्मा की जवर अवतरण जब होती है तुरंत गीता जयंती भी आरंभ हो जाते हैं। शिव जयंती विशेष है ना, हमारा जयंती भी है, शिव बाबा बर्थडे हमारा बर्थडे है, उसमें गीता जयंती तीनों हमारा भी और शिव बाबा और गीता जयंती। और बाबा ने क्या बोला? और जी हाँ आत्मा इतना छोटी सी आत्मा हम माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट समाया हुआ है, समाया हुआ है ना, कितना वंडरफुल है, दिखता नहीं, सब कुछ कर रहे ये छोटी सी सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा शरीर से निकल गया तो बोल सकते हैं, देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सभी अनुभवी है, बाहर वाला भी जानते हैं। और क्या बोला बाबा में, बाबा मुरली में? और दो बाप का परे कौन कौन दो बाप? शिव बाबा ब्रह्म बाबा। ऐसा भी ब्रह्म बाबा शिव बाबा की बता सकते हैं, लेकिन लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, शरीर का पिता हम सभी जानते ही है, लेकिन पारलौकिक बाप भगवान को यथार्थ सत्य ज्ञान के आधार से अभी पहचानने का, जानने का, समझने का, अनुभव करने का ये भी बता सकते हैं। और क्या है? आज बाबा मुरली में महिमा सुनाई, परमात्मा की महिमा। माताजी ने बोला ना, परमात्मा गाइड है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, लिबरेटर है, यवर प्योर है, सदा पवित्र है। परमात्मा देखिए कितना पवित्र, पवित्रता का सूर्य है, तभी तो हमारा आत्मा को पावन बनाने वाला पतित पावन परमात्मा है। ये महिमा श्री कृष्ण को नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। एक लिस्ट भी बना सकते हैं श्री कृष्ण की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है, ये तो सभी जानते भी है। श्री कृष्ण बाल्यावस्था, युवावस्था, फिर शरीर छोड़ दिया, सब चीजें दिखाया है, दिखाया नहीं ना? माँ बाप भी है श्री कृष्ण का, शिव बाबा को माँ बाप नहीं है, शरीरी है, अशरीरी है, अजन्मा है, अभोक्ता है, ना लज्जफुल है परमात्मा। परमात्मा संपूर्ण ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर है। परमात्मा का जो ज्ञान है ना, इस विश्व में जितने भी बुद्धिजीवियों के पास जो ज्ञान है ना, सब कुछ बाबा के पास है, क्योंकि जीवन को वज्रतुल्य खुशी आनंदमय शांतमय प्रेममय हल्का संतुष्ट बनाने का एक पैसा भी खर्च नहीं है, है? देखिए हम कितने भाग्यवान है, सोचिए खुशी के लिए सारे विश्व में कितना दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कितना मेहनत करते खुशी के लिए, हा? होटल में जाना, इधर उधर घूमना फिरना देखना, विकारों में जाना, कितना करते हैं मेहनत, लेकिन यहाँ हम खुशी के लिए करते हैं, खुशी से करते हैं, और हम कौन है? खुश नसीब आत्माएं हैं, हमारा नसीब में सदा खुशी लिखा हुआ है, दिखाई देता है? देखिए आपका चेहरा ही खुश नसीब है, मुस्कुराता चेहरा, ऐसा हमारा भाग्य में है, पद्मा पदम भाग्य है, पूरा महिमा एक बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, एक एक परमात्मा का जो महिमा होता है, मुक्ति दाता, कितने बातों से हम मुक्त हो गया है सोचिए, देह का बांध, देह संबंधियों का, विकारों का, कितने बातों से मुक्त कर दिया, जीवन मुक्त स्थिति बना दिया, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था है। लोग इसलिए सन्यासी लोग संसार में रहते, वो लोग जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, विकारों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता है, काम विकारों को जीत नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए वो लोग भाई संसार छोड़ दो, संसार है तो मुक्ति, जीवन मुक्ति उनके तो बुद्धि में लक्ष्य है ही नहीं है सन्यासियों का, उनको केवल मुक्ति में जाने का होता है, लेकिन मुक्ति का और मुक्ति दाम का, मुक्ति दाता का ज्ञान उनके पास भी नहीं है। और क्या बोला बाबा ने? जी और सत्युग में तो आदि समय, इसलिए बाबा ने बोला सत्युग में आदि समय है, कलयुग अंत है, तमो प्रधान है, जब परिवर्तन के समय होगा तभी तो परमात्मा का अवतरण होगा ना। जब अंधेरा होता है, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रकाश तो चाहिए, प्रकाश आते ही अंधेरा ऑटोमेटिक क्या समाप्त हो जाता है, ऐसा कलयुग को समाप्त करने के लिए, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं परमात्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते है। जब परमात्मा का अवतरण होता है, अज्ञान अंधकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, फिर उजाला है, वही सत्युग का कहा जाता है। और क्या बोला बाबा ने? आत्माभिमानी मनुष्य मनुष्य को देता है, लेकिन आत्मों का ज्ञान, आत्मों का ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है, इसलिए परमात्मा को आना पड़ा। और वरदान क्या है? एक एक सम टोटल बोलिए वरदान, कंप्लीट। भाई लोग, इसलिए बाबा ने मुरली का चिंतन के लिए, मनन के लिए थोड़ा समय देंगे ना, क्योंकि ये हमारा भोजन है। मुरली माना क्या है? आत्मा का भोजन है, वो भी शक्तिशाली भोजन है। वो भोजन खाएंगे तभी तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन होगा ना, हजम करना है। सुनना एक विधि है, अच्छी बात है, लेकिन उसको मनन करके चिंतन करके स्वरूप में लाएंगे तभी हजम होगा, हमारा मन शांत रहेगा, शीतल होगा, खुश में रहेगा, बुद्धि दिव्य बनेगा, संस्कार श्रेष्ठ बनेगा। पॉइंट वो भी पॉइंट है, देहाभिमान वो भी चिंतन में आएगा। वरदान है समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवा। नेक्स्ट स्लोगन क्या है? अभी चिंतन और लिखने का अभी है बाकी, अभी हम मुरली को ही रिवाइज कर रहे हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि से प्रगति। अभी आप लोगों के पास सभी के पास नोटबुक पेन है, है ना? अभी देखिए, लिख लीजिए देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होता। पहले देह अभिमान क्या है लिखिए, देह अभिमान क्या है, मैं प्रश्न बता देता हूं आपके, उसके बाद आप लोग चिंतन करके लिखिए। लिखा, देह अभिमान माना क्या है, देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होता है, लिखा। फिर तीसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी स्थिति माना क्या है, आत्माभिमानी स्थिति में रहने से क्या क्या फायदा है। लिख लिया, 10 मिनट है, 10 मिनट में ये चारों प्रश्नों का संक्षिप्त में सार रूप में लिखिए 10:15 बजे तक, ठीक है? फिर दूसरा चिंतन के लिए बता देंगे। जो नहीं लिख रहे है वो लोग कम से कम चिंतन कीजिए, फिर पॉइंट रूप में बता सकते हैं, ठीक है ना जी? लिख लिया, सुना सकते हैं? मैं पहले से बोला आप लोग सुनाने का, हम सुनने का है। संक्षिप्त में सार रूप में सुनाइए देह अभिमान।
ओम शांति। देह अभिमान क्या है? देह, देह के संबंध, देह की दुनिया और देह के पदार्थों से, वह जब हमारे नशे का स्रोत होता है तो इसको कहेंगे देह अभिमान। जब हमारा नशे का आधार सब चीज बाहर है,
नुकसान क्या है?
नुकसान भी बताना है, इससे नुकसान क्या है कि हमारी अपनी शक्ति घटती है, सोल पावर घटती है, हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो स्वतंत्र होने के बजाय और भी बंधन में आ जाते हैं। और ये डिपेंडेंसी, हमें बनना है स्वराज्य अधिकारी, पर हम और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसी से आत्मशक्ति घटती है।
आत्माभिमानी क्या है?
अच्छा, आत्माभिमानी स्थिति माना क्या? जब मैं जो हूं जैसी हूं, यानी आत्मा अपने गुणों की स्मृति में है और उसकी अनुभूति में है, और अपनी जो भी विशेषताएं हैं, हमारी वैल्यूज, हमारे वर्च्यूज, हमारी दिव्यता और हमारी पावर्स, आत्मा की जो पावर है, जब हम इसके नशे में रहते हैं और अपने पिता के नशे में रहते हैं कि मैं कौन, जो दादी जानकी हमेशा कहती है, मैं कौन, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं और मुझे क्या करना है,
फायदा क्या?
जब नशे, इसका नशा है तो हम आत्माभिमानी हैं। और इससे फायदा क्या है कि इससे हमारी सोल पावर बढ़ती है, परमात्मा से सहज अनुभूति होती है, क्योंकि जब आत्माभिमानी है माना सोल कॉन्शियस, तो परमात्मा से कनेक्शन सहज और पावरफुल, और प्राप्ति का सारा स्रोत परमात्मा है, क्योंकि स्रोत से डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण। फिर जो अभी हमें 3 काम करने हैं, पास्ट को दग्ध करना है, प्रेजेंट को सुंदर बनाना है, खुशनुमा, और भविष्य को जमा करना है, है ना? तो ये 3 काम सहज हो जाते हैं।
जल्दी जल्दी टाइम होते जा रहे, सार में संक्षिप्त में एक एक पॉइंट, देहाभिमान से नुकसान क्या है, देहाभिमान क्या है, नुकसान क्या है, आत्मभिमान क्या है, आत्मफायदा, चार पॉइंट में बता दीजिए।
ओम शांति। देहाभिमान मना नाम रूप शान मान रूप ऐसा अभिमान, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लायर हूँ, ये सब देहाभिमान है। नुकसान क्या है, देहाभिमान से मैं इसमें क्या होता है, देहाभिमान से आत्मपतित बनती है देहाभिमान से, फिर देहाभिमान से पाप बढ़ता है, देहाभिमान से संबंध जुड़ता है, टूटता है, फिर देहाभिमान से लून पानी बन जाते हैं।
आत्माभिमान क्या है?
आत्माभिमान मना देह के सर्व संबंध भूलना, मना एक आत्मा मना ज्योति अभिमान में, आत्माभिमान में रहेंगे तो मेरा संबंध कोई नहीं है, मना संबंध से आत्माभिमान मना एक मैं आत्मा ज्योति हूँ। एक बताता आत्मा भी मना देह का बोलना, देह का संबंध सब कुछ बोलकर एक मैं ज्योति मना ही आत्मा भी मान स्थिति है। और आत्मा भी मान स्थिति वाला का लाभ क्या है, मना देह का संबंध से हम सब छूट जाएगा, ना देश कुल सबसे हम मुक्त रहेंगे, मेरा कोई देश नहीं।
ओम शांति। भाई साहब ने बोला हर एक बात शॉर्टकट में बताना तो मैं एक एक दो दो लाइन में बता रहा। देह अभिमान माना क्या, देह अभिमान माना सबसे बड़ा रोग है। रोग क्या, कि वो खुद को आकारी समझता है, विकारी हो जाता है, उसके कारण वो अहंकारी हो जाता है। दूसरा सवाल है, देह अभिमान में आने से क्या क्या नुकसान होता है। देह अभिमान में आने के कारण वो अहंकारी हो जाता है, और अहंकार में आने के कारण जीवन में वो अपनों से और लोगों से दूर चला जाता है, उसका व्यवहार गलत हो जाता है, व्यवहार गलत होने के कारण लोगों से दुआएं नहीं मिलती है लेकिन श्राप मिलता है, ना उसे भगवान मिलते हैं, ना भगवान का वर्षा मिलता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरी पॉइंट है आत्माभिमानी स्थिति माना क्या। जैसे देह अभिमानी स्थिति होती है उसके अपोजिट आत्माभिमानी स्थिति होती है। आत्मा अभिमानी माना निराकारी, जो खुद को निराकारी समझता है हमेशा, जिसके कारण वो निराकारी अपना निर्विकारी बन जाता है। हाँ, निराकारी समझने के कारण निर्विकारी बनता है, निर्विकारी होने के कारण निराहंकारी बन जाता है। चौथा प्रश्न है, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है वो निराहंकारी हो जाता है। निरहंकारी होने के कारण जीवन में अपने और परायों से स्नेह मिलता है, दुआएं मिलती है, भगवान से भी दुआएं मिलती है और भगवान से वर्षा भी मिलता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। ओम शांति।
ओम शांति। तो पहला देहाभिमान क्या है और उसका नुकसान, सो ये भी एक सिंगल वर्ड्स में स्वयं बाबा जैसे कहते हैं, स्वयं को देह समझना ही देहाभिमान है। तो स्वयं को देह समझना ही देहाभिमान है, और सिंगल वर्ड्स में डिफिनेशन जैसा बाबा मुरली में बताते हैं, देहाभिमान माना विस्मृति है, स्वयं को भूल गए हैं। और भी बाबा बताते हैं उल्टा लटकना, कोई व्यक्ति उल्टा ज्यादा कितना समय लटक सकता है, फिर सांस ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा देह का गर्व होना, जैसे कि मैं सुंदर हूं या मैं सुंदर नहीं हूं, ऐसा सोच के हीन भावना भी देहाभिमान है। तो देह का अहंकार, ओके 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 okay. और अनकॉन्शियस स्टेज है आत्माभिमानी स्टेज, ओके। जैसा मुरली से रिलेटेड, स्वयं को आत्मा मानना, समझना और उसका अनुभव करना आत्माभिमानी स्थिति है। सूक्ष्म ज्योति आत्मा समझ हर परिस्थिति को पार कर लेंगे जब आत्माभिमानी स्थिति है तो। और कॉमन में जो भय है मृत्यु का, बीमारी का, इस सब में भी एकरस स्थिति हो जाती है, लाभ हानि में एकरस। ओम शांति।
पहला है देहाभिमान क्या है। देहाभिमान अर्थात देह के मतलब किसी भी विकारों के प्रति कोई कर्म करेंगे तो तो वो देहाभिमान में काउंट होता है। इसके नुकसान क्या होंगे, देहाभिमान से हमारी स्थिति खराब हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, लून पानी हो जाते हैं, उमंग उत्साह चला जाता है, जो भी काम करेंगे उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नहीं होंगी, मन बुद्धि एकाग्र रहेंगी और आत्मा का बल जो है कमजोर हो जाता है, टेंशन रहता है, मूड खराब हो जाता है। आत्महिमानी स्थिति है, आत्मा अपने सातों गुणों में स्थित होकर के कोई कर्म करती है तो उसको आत्महिमानी स्थिति कहते हैं। इसके फायदे हैं, उमंग उत्साह बढ़ा रहता है, खुशी रहती है, काम अच्छी तरह से होता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों होती है, बीपी नॉर्मल होता है, मूड अच्छा होता है, विकारों से मुक्त रहते हैं, सर्वशक्तियां साथ होती, परमात्मा की मदद होती, स्वभाव संस्कार अच्छे होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। थैंक यू।
देखिए कितना उमंग उत्साह होता है, अपना सत्य स्वरूप के आधार से हम बताएंगे आत्मा सत्य स्वरूप में। सिंपल है, आत्माभिमानी में हमारा जो आत्मा का सात गुण है, उस सात गुणों के आधार से जो भी हम कर्म करते हैं आत्माभिमानी है। जो विपरीत विकारों के वशीभूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वशीभूत होकर कर्म करते हैं, वो देहाभिमान है। ये सभी जानते, इसलिए चिंतन करने से हमको चिंतन बढ़ता है, उमंग उत्साह आता है, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास सहज हो जाता है, अशरीरी बनने का सहज होता है और बाबा के साथ कनेक्ट सहज रीति से अशरीरी बनेंगे, एक सेकंड में बाबा के साथ कनेक्ट, बाबा से शक्ति लेने का, बाबा से संबंध जोड़ने का, बाबा से रूहान करने का, सब आत्माभिमानी स्थिति में फायदा है। और चिंतन के लिए मैं पॉइंट दे देता हूँ, आप लिख लेना, फिर आप लोग मनन चिंतन कर लेना, टाइम 10:30 हो रहा है। देखिए अभी लिखना नहीं है, सिर्फ प्रश्न दे रहा हूँ आज की वरदान के आधार से। बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाए, लिखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है इस पर बहुत चिंतन, बहुत जरूरी है बुद्धि को स्वच्छ बनाने का, क्योंकि पूरी शक्ति बुद्धि के पास है। योग योग में एकाग्रता के लिए भी, विजुअलाइजेशन के लिए भी, रोज वैरायटी वैरायटी योग की गहरा अनुभूति करने के लिए भी बुद्धि के पास, दिव्य बुद्धि के पास ये शक्ति, साधारण बुद्धि के पास नहीं है, वो लोग एकाग्र नहीं कर सकता है। बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाए, संपूर्ण समर्पण बुद्धि क्या है, ये दो पॉइंट पर आप लोग चिंतन करके लिख लीजिए। बुद्धि को स्वच्छ कैसे बनाए, संपूर्ण समर्पण बुद्धि क्या है, ये बहुत थोड़ा गहरा भी है, बहुत जरूरी भी है। जब तक हमारा बुद्धि समर्पण नहीं है, सब टोटल बुद्धि में मेमोरी में है, आप फास्ट का एक सेकेंड फाइल खोल के देख सकते हैं, बुद्धि में बुद्धि के सामने आ जाएगा जो घटना घटी है, एक सेकंड भी नहीं लगता है, आ जाता है ना बुद्धि में। कोई हमको कोई गाली दिया, कोई नुकसान किया, जो भी, एक सेकंड भी नहीं लगता वो फाइल को खोलने के लिए। इसलिए सब बुद्धि में, बुद्धि से खाली करने का और समर्पणता, बुद्धि टोटल जो भी हमारा बुद्धि के अंदर है वो टोटल समर्पण करने का। जब बुद्धि क्लीन एंड क्लियर और प्योर होता है तभी बुद्धि विजुअलाइजेशन, परमात्मा का दिव्य स्वरूप को एकाग्रता से हम बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से परमात्मा को देख भी सकते हैं, उस शक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं। ये चिंतन करने का, अभी 2 मिनट योग करते हैं।